ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 113वीं संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 113वां एपिसोड आकाशवाणी से प्रसारित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारतवासियों से कई विषय पर अपने विचार साझा किए, जिसमें अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों से लेकर प्रेरणादायक स्थानीय प्रयासों तक और राष्ट्रीय अभियानों की लहरों से गुजरते हुए पर्यावरण तथा फिटनेस और पोषण पर बात की। और आज हम देखेंगे कि कैसे ये सभी बातें हमारे देश के भविष्य को आकार देती हैं और भारत को एक नए उजाले की ओर ले जा रही हैं। आज मन की बात के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। अशोक जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अंतरिक्ष से शुरुआत करी और मेरा भी पहला सवाल आपसे उसी से जुड़ा रहेगा। हमने बीते कुछ सालों से देखा कि सरकार का खासा ध्यान स्पेस सेक्टर की ओर है और प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता और बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र पर भी प्रकाश डाला। इसका भारत की वैश्विक स्थिति की ओर और तकनीकी उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ा है?
जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री ने हर एपिसोड की तरह इस बार भी शुरुआत इस तरह से की कि आज हम एक बार फिर बातचीत करेंगे देश की उपलब्धियों की, देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों की। 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है। उसी कड़ी में फिर उन्होंने जो हमारी अंतरिक्ष की सफलता है उसके बारे में बात की और जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है उसकी भी चर्चा की। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये रही कि प्रधानमंत्री ने आज ये जो नेशनल स्पेस डे की चर्चा में उन्होंने मद्रास IIT से पढ़े हुए कुछ छात्रों ने जो एक स्टार्टअप चलाया है गैलेक्स आई, उन युवाओं से बातचीत की और लगभग सभी जो उसमें स्टार्टअप के युवा हैं और उन्होंने देश के युवाओं को भी प्रेरित करने की दृष्टि से उन सबसे समझने की कोशिश की कि उन्होंने किस तरह से ये स्टार्टअप बनाया और अभी वो क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत ही रोचक प्रसंग था कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं अपनी उपलब्धियों को। तो ये एक शुरू में जो उन्होंने बात की और फिर इसी कड़ी में उन्होंने श्रोताओं को ये भी बताया कि पहला जो स्पेस डे जिसको हम मना रहे हैं, क्योंकि तो पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति बिंदु पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। तो ये तो आज हुई बात स्पेस के बारे में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हम लोगों को बताया, लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो आज कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जो लाल किले से बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1,00,000 युवकों को राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने का आह्वान किया था, और ये शायद आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का आह्वान नहीं किया। एक तरह से परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि भारत की राजनीति में वही आ रहे हैं जिनके पिता या माता या उनका परिवार, जिसको हम राजनीति में परिवारवाद कहते हैं, उसकी पृष्ठभूमि में उन्होंने ये जो आह्वान किया था। और उन्होंने आज ये बताया कि उनकी इस बात पर बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे, बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो आज प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से सीधा संवाद करते हुए कही। अगर हम आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ कि जो बात उन्होंने ये भी कही कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए थे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया। तो आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक बार फिर उसी भावना की आवश्यकता है और उन्होंने सभी युवा साथियों को कहा कि वो इस अभियान से जरूर जुड़े।
जैसे अभी आपने बात बताई कि प्रधानमंत्री जी ने 1,00,000 युवाओं का राजनीति के क्षेत्र में आने का लाल किले से आह्वान किया था, आप इसको कैसे देखते हैं कि कितना जरूरी है एक विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसमें यंग माइंड्स का पार्टिसिपेशन कितना जरूरी है?
प्रधानमंत्री ने उसके बारे में स्पष्ट तौर से कहा भी, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही, और वो जब से हर घर तिरंगा अभियान उन्होंने जोड़ा था तो उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा देश इस अभियान में पूरी तरह से जुड़ चुका है, अपनी पूरी ऊंचाई पर देख रहा है। और उन्होंने विजुअल्स के द्वारा देशवासियों को दिखाया कि देश के कोने कोने से इस अभियान में जो जुड़ी हुई अद्भुत तस्वीरें थी उसमें हमने देखा कि घरों पर तिरंगा लड़ाते लोग, स्कूल विश्वविद्यालयों में तिरंगा दिखा, लोगों ने अपनी दुकानों दफ्तरों में तिरंगा लगाया, डेस्कटॉप मोबाइल गाड़ियों पर भी तिरंगा लगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो देखने को मिली कि जो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचाई पर एक पुल बना है रेलवे का, उसमें इतना लंबा एक तिरंगा लहराते हुए एक पूरी की पूरी जैसे सेना चल रही है, और भी कई स्थानों पर जल थल नभ हर जगह हमारे झंडे के तीन रंग जो हैं वो दिखाई दे रहे थे, और ये 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सेल्फी भी पोस्ट की है। तो इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है, और यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत।
मोदी जी ने वन्य जीव संरक्षण और मानव जानवर संबंधों को सुधारने के विभिन्न पहलुओं को अभी उल्लेख किया था, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे।
उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के युवा साथी भी किसी से पीछे नहीं है, तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि अरुणाचल में हमारे कुछ युवा साथियों ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करना शुरू किया है, क्योंकि वो वन्य जीवों को सींगों और दांतों के लिए शिकार होने से बचाना चाहते। नाबम बापू और लिखा नाना, ये दो नाम उन्होंने लिए, उनके नेतृत्व में ये टीम जानवरों के अलग अलग हिस्सों की 3D प्रिंटिंग करती है। जानवरों के सींग हो, दांत हो, ये सब 3D प्रिंटिंग से तैयार होते हैं, और इससे फिर ड्रेस और टोपी जैसी चीजें बनाई जा रही हैं। गजब का विकल्प है, इसमें बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग होता है। तो ऐसे अद्भुत प्रयासों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। पीएम ने कहा, मैं तो कहूंगा कि अधिक से अधिक स्टार्टअप्स में सामने आए ताकि हमारे पशुओं की रक्षा हो सके और ये चली आ रही परंपरा जो है ये आगे बढ़े।
हमने देखा कि अरुणाचल, असम और कई वो क्षेत्र जिनकी आम तौर पर चर्चा नहीं होती, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वो चर्चाओं का हिस्सा कम रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा जब उन क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों की बात की जाती है, तो उन सभी क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए, ये कितना प्रेरणादायी है।
प्रधानमंत्री, ऐसा मुझे लगता है कि अपने मन की बात हर एपिसोड वो पूर्वोत्तर का तो अवश्य ही कुछ न कुछ इस प्रकार देश के सामने रखते हैं जो प्रेरणादायक हो। जैसे इस बार उन्होंने असम में तिनसुकिया जिले के एक छोटे से गांव बारेकुरी में मोरान समुदाय के लोग जो हैं वो हुलाक गिबन, जिन्हें यहाँ पोलो बंदर कहा जाता है, तो हुलाक गिबन्स ने इस गांव में ही अपना बसेरा बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जानकर आश्चर्य होगा देशवासियों को कि इस गांव के लोगों का इन हुलाक गिबन के साथ बहुत गहरा संबंध है। गांव के लोग आज भी अपने पारंपरिक मूल्यों का पालन करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सारे काम किए हैं जिससे गिबन्स के साथ उनके रिश्ते और मजबूत हों। उन्हें जब ये एहसास हुआ कि गिबन्स को केले बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी तय किया कि गिबन्स के जन्म और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों को भी वैसे ही पूरा करेंगे जैसे वे अपने लोगों के लिए करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो थी, और विशेष तौर से पूर्वोत्तर से आ।
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के झाबुआ के सफाई कर्मियों का जिक्र किया, और साथ ही में इको फ्रेंडली उत्पादों और कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई स्टार्टअप्स का भी उल्लेख किया, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
झाबुआ के जो लोग हैं सफाई कर्मी भाई बहनों ने वेस्ट टू वेल्थ का एक संदेश सच्चाई में बदल कर दिखाया। इस टीम ने झाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत कलाकृतियां तैयार की हैं, और अपने इस काम के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक और इस तरह की बोतलें, टायर्स, पाइप इकट्ठा करके इनकी कलाकृतियों में हेलीकॉप्टर, कार, तोपें भी शामिल की, खूबसूरत हैंगिंग गुलदस्ते भी बनाए हैं। तो यहाँ इस्तेमाल किए गए टायरों का उपयोग आरामदायक बेंच बनाने के लिए भी किया है। तो सफाई कामगारों की इस टीम ने बिल्कुल रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल इस मंत्र को अपनाते हुए ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे देश के सामने।
अशोक टंडन जी, कैच द रेन मूवमेंट और पोषण माह जैसे अभियानों के संदर्भ में इन अभियानों की प्रभावशीलता पर आपके क्या विचार हैं, और ये भारत में पर्यावरण और स्वास्थ्य मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाता है?
कई क्षेत्रों में ये काम हो रहा है पर्यावरण के अनुकूल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारे जो पर्यटन स्थल है विशेषकर पहाड़ी इलाकों में, पहले कचरे को देखकर ये जो लोगों में ई कॉन्शियसनेस आई है, और ये इससे की जो टीमें बनी हैं, यानी कई सारे स्टार्टअप्स की टीमें पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयास कर रही हैं, और एक टीम ने तो इकोकारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। ये प्लास्टिक जो अपशिष्ट होता है से अलग अलग खूबसूरत चीजें बनाते हैं, ये खिलौनों को रिसाइकल करके ऐसा जिसमें मिलकर काम कर रहे हैं। तो कई बच्चों के कितनी ही जल्दी खिलौनों से उग जाते हो, वहीं ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें कभी खिलौनों का सपना सहयोग रहते हैं। तो ऐसे खिलौने जिससे अब बच्चे नहीं खेलते, उन्हें लोगों को ऐसी जगहों पर देना चाहिए ताकि उनका उपयोग हो सके, और ये पर्यावरण की रक्षा का भी एक रास्ता है। ये जो खिलौनों के बारे में भी प्रधानमंत्री लगातार अपने मन की बात में इसका जिक्र करते रहते हैं।
हमारी इस चर्चा में एक शब्द हमें कई बार सुनने को मिला, स्टार्टअप्स। तो बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि कई तरह के स्टार्टअप्स और भारत के कोने कोने से ये स्टार्टअप्स निकल करके आगे आए हैं और हमें देखने को मिले, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे स्पेस या फिर हेल्थ या एनवायरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और भी कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप्स हमको देखने को मिले, और सरकार का भी पूरा समर्थन इनके लिए रहा है। आपकी नजर में ये भारत को आगे बढ़ाने में कितनी मजबूती प्रदान करते हैं?
स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने का काम प्रधानमंत्री लगातार करते हैं, और मन की बात में तो विशेष तौर से अन्य क्षेत्रों में जहां जहां जिस फील्ड में स्टार्टअप काम कर रहे हैं उनकी उपलब्धियों का जिक्र करते रहे। आज प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से संस्कृत के बारे में भी बात, और पूरी दुनिया विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया है, और आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव है, और दुनिया के कई देशों में तो संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च का प्रयोग भी हो रहा है। और ये बात उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताई, कैसे यूरोप में कुछ लोग संस्कृत के नाम पर कई कार्यक्रम चला रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि पोषण के बारे में भी प्रधानमंत्री का बहुत आग्रह रहता है, और उन्होंने कहा कि बच्चों का पोषण तो देश की प्राथमिकता भी है। तो वैसे तो ये पोषण पूरे साल हमारा ध्यान रखता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस कर, और इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। तो पोषण को लेकर लोगों को जो जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। कितनी ही जगहों पर आंगनबाड़ी के तहत माँ बच्चा समिति की स्थापना भी हुई है, और पिछले वर्ष तो पोषण अभियान को एक नई शिक्षा नीति के साथ भी जोड़ा गया, यानी पोषण भी पढ़ाई भी इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया जा रहा है। तो ये सब लोगों को उन्होंने इसके प्रति जागरूक रहने के लिए कहा, और इस अभियान से जुड़ने के बारे में भी पाया।
इसी से जुड़ी फिट इंडिया कैंपेन के ऊपर भी बात की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन में फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम विश्व की कुछ हेल्दीस्ट कंट्रीज को देखें जैसे कि सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इस तरह की कई कंट्रीज हैं जो कि काफी स्वास्थ्य के मामले में बहुत आगे आती हैं, भारत को भी हम आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। तो एक देश जो विकास के पथ पर अग्रसर है और विश्व के पटल पर रोजाना नई बुलंदियां हासिल कर रहा है, तो उस देश की जनसंख्या का स्वस्थ रहना, फिट रहना कितना जरूरी है।
बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन एक बात मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये जो मन की बात है ये 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है, और इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी, कितनी ही भाषाएं शामिल हैं। और मन की बात का प्रसारण तो आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों द्वारा किया जाता है। तो ये शुरुआत हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को, देखिए आज लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा अंत में भी, ये तो उनका लोगों के साथ संवाद करने का तरीका जिससे उनको ऊर्जा मिलती, और इसलिए वो लोगों से सुझाव भी मंगवाते हैं और उन सुझावों को साझा भी करते हैं और उनकी चर्चा भी करते हैं। तो ये अपनी तरह का एक बहुत अद्भुत किस्म का एक संवाद है, और ये एक अनूठा प्रयास है जिसको हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही सफल रहा है।
और अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। अशोक टंडन जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 113वीं संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289904044।